नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथन्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखन्विताश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपीककान्ता श्रीराधाकान्ता नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चनं गौरङ्गे श्रीराधे वृन्दावनेश्वरि ऋषभानुसूतिदेवि प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैतं गदाधरं श्रीवासदी गौरभक्तवृन्दा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 13 टेक्स्ट नंबर 18। अभी हमें भगवान श्री कृष्ण गेय के विषय में बता रहे हैं कि वो जो परमात्मा है, दो गेय पहले बताए, एक तो विज्ञान ब्रह्म जो मत पर है, भगवान के आदीन है, जो 16-13 श्लोक में हमें भगवान श्री कृष्ण ने बताया था। उसके बाद से परमात्मा के विषय में भगवान श्री कृष्ण ने बताना शुरू किया और इसी श्रृंखला में आज भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं ज्योतिष्याम तज्जे तज्ज्योतिष तमसः परमुच्यते ज्ञानं येयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ज्योतिष्याम अपि। ज्योतिष्याम का मतलब होता है जितनी भी प्रकाशमान वस्तुएं हैं ना, जितनी ज्योतिमय वस्तु, जो भी चमकने वाली, जो प्रकाश वाली वस्तुएं हैं, उन सब में ज्योतिष्याम अपि तत् ज्योति, उन सबको प्रकाश प्रदान करने वाला जो स्रोत है, वो जो है वो भगवान के विषय में भगवान श्री कृष्ण के बता रहे हैं कि जो परमात्मा है, जो ज्ञ है, जो सेकंड प्रधान ज्ञ के विषय में हम पढ़ रहे ना, बोला वो जो है उसकी एक क्वालिटी ये है कि जितने भी प्रकाशमान चीजें हैं उन सब उससे ही, उनका स्रोत वो है, उनसे ही निकलता है वो सारा प्रकाश। और आगे बताया तमसः परमुच्यते। तमस कहते हैं अंधकार को, तम बोलते ना, वो अंधकार को बोलते हैं। और परमुच्यते यानी कि परम का मतलब होता है अंधकार से बिल्कुल दूर, यानी कि जहां पर ऐसे बोलते हैं ना, श्री कृष्ण है सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण ताहार नाही माया अधिकार। तो यहां पर बता रहे तमसः परम उच्यते यानी कि वो जो ज्ञान है, ये चीज है ना, उससे तमाम अंधकार बहुत परे है। ज्ञानम यानी कि वो ज्ञान नहीं है, ज्ञम वो ज्ञान जानने योग्य है, ज्ञ मतलब जानने योग्य, और ज्ञान गम्यम यानी ज्ञान के द्वारा पहुंचने का, यानी कि ज्ञान का लक्ष्य वो वही है। मतलब ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, वो जो कुछ भी आप जानते हो वो भी वही है, जो जानना चाहते हो वो भी वही है, और जानने के बाद जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो वो भी वही है। और रिधि सर्वस्य विष्टिति मतलब रिधि मतलब हृदय में, सर्वस्य मतलब सबकी, विष्टिति इसका मतलब है कि वो सबके हृदय में स्थित है। यानी वो जो जिसके बारे में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं परमात्मा के विषय में, या ज्ञान ज्ञान के विषय में बता रहे हैं ना, तो वो उसके बारे में कह रहे हैं वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत्र हैं। यानी कि स्रोत्र का मतलब होता है उससे ही सारी चीजों को प्रकाश मिलता है। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं, यानी कि अंधकार से बिल्कुल परे हैं और हमारी दृष्टि से परे हैं, क्योंकि हम अंधकार में रहते, तमह में रहते हैं। वे ज्ञान हैं, जिनको ज्ञान हासिल हो जाता है ये है, और ज्ञान जानने योग्य जो चीज है वो भी वो है, और ज्ञान का लक्ष्य भी वही है। वे सबके हृदय में स्थित है, और उनकी एक क्वालिटी ये है कि वो परे हैं, भले जो भी है इतने बड़े हैं, विभू है, लेकिन फिर भी उनके रहने की जगह तो कौन सी है, भगवान श्री कृष्ण साफ साफ बताते हैं, हृदय सर्वस्य विष्टितम, वो सबके हृदय में स्थित है। श्रीला प्रभुपाद जी हमें बहुत सुंदर तरीके से समझाएंगे तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय हो। परमात्मा या भगवान, भगवान ही सूर्य चंद्र तथा नक्षत्रों जैसे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत्र हैं। श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो आज हमें चमकने वाली चीजें नजर आ रही है ना, जैसे सूरज, नक्षत्र, चंद्रमा, इन सबको रोशनी कौन देता है, प्रकाश कौन देता है, परमात्मा से उनको मिलती है या भगवान से मिलती है। वैदिक साहित्य से हमें पता चलता है कि वैकुंठ राज्य में सूर्य या चंद्रमा की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वहां पर परमेश्वर का तेज जो है। अब वैदिक साहित्य का क्या मतलब है ना, आपको बताया था कि शास्त्र को बोलते हैं, जितने भी वेद है ना, जितने शास्त्र हैं, और उनमें हमें पता चलता है कि जो भगवान का घर है वहां पर सूर्य और चंद्रमा की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि उन जो सूरज और चंद्रमा उनको रोशनी कहां से मिली, उनको प्रकाश भगवान से मिली। अब जिधर भगवान होंगे उधर तो अंधकार होगा ही नहीं ना, तो उधर वहां के लोक में तो भगवान रहते हैं, तो वहां पर ना सूरज और चंद्रमा की जरूरत नहीं पड़ती है। ये कहां से कौन से है ना वैदिक साहित्य से पता चलता है, ये हमें श्रीमद भगवद गीता चैप्टर 15 टेक्स्ट नंबर 6 भगवान कहते हैं, न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। बहुत ही सुंदर और मेरा बहुत प्रिय श्लोक है, जिसमें भगवान ने कहा वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्रमा के द्वारा प्रकाशित होता है और न ही अग्नि या बिजली के जरिए प्रकाशित होता है। यानी कि वहां पर न सूर्य है, न चंद्रमा है, न अग्नि है, और न ही बिजली की, इलेक्ट्रिसिटी की कोई जरूरत होती है। तो फिर यहाँ पर प्रश्न होता है कि क्यों, कैसे प्रकाशमान होता है, क्योंकि भगवान वहां पर रहते हैं, भगवान समस्त रोशनियों के स्रोत्र हैं, तो और वहां पर तो रोशनी खुद ब खुद है ना। तो यहाँ पर मुझे तब में पढ़ती थी तो मुझे ऐसा लगता फिर वहां पर रात होती नहीं होगी ना, लोग सोते नहीं होंगे। वहां पर पता है क्या होता है, वहां पर इटर्नल समय होता है, समय बीतता नहीं होता है, पास्ट कुछ नहीं होता है, हर चीज प्रेजेंट होती है। हमारी बुद्धि इस चीज को नहीं समझ सकती है, लेकिन हर चीज नित्य है, पास्ट कुछ भी नहीं है, जो भी चल रहा होता है कंटिन्यूस चल रहा होता है। पता नहीं कैसा होता होगा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर लौट कर नहीं आते, वही मेरा परम धाम है। तो इसी चीज को श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं ना कि देखो वैदिक साहित्य से हमें पता चलता है कि वैकुंठ राज्य में सूर्य चंद्रमा की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वहां पर परमेश्वर साक्षात रहते हैं। भौतिक जगत में वह ब्रह्म ज्योति या भगवान का आध्यात्मिक तेज महतत्व अर्थात भौतिक तत्वों से ढका रहता है। अब बहुत यहाँ पर क्यों नहीं है वो, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते मैं सबके हृदय में हूँ, तो फिर यहाँ पर भी वो रोशनी होनी चाहिए ना, लेकिन होती है वो रोशनी, लेकिन महतत्व भौतिक तत्व, महतत्व मैंने आपको बताया था याद है, 24 तत्व, जैसे पांच ये भूत हैं, पंच महाभूत, पांच कर्म इंद्रियां, पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच इंद्रियों के विषय, ये गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, और ये सब मिला के जो 24 तत्व है ना महातत्व, मैंने इनके बारे में बताया। तो इसके बारे में बता रहे हैं कि भगवान का ये आध्यात्मिक तेज जो है, ब्रह्म ज्योति जो है, वो महातत्व यानी तत्वों के द्वारा ढका रहता है, भगवान उसको ढक देते हैं। अतः इस जगत में हमें फिर अब इस, जब ढक गया भगवान का तेज तो अंधेरा तमस हो जाता है, तो उसको इस जगत में हमें सूर्य चंद्रमा बिजली आदि प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में ये सारे भौतिक तत्व जो महत्त्व है ना वो नहीं है। ये जो संसार में जो ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार ये सब भगवान के लोक में नहीं है। भगवान के लोक में सिर्फ और सिर्फ क्या है, आध्यात्मिकता है। तो वहां पर भौतिक तत्व की वजह से कुछ आच्छादित नहीं रहता है, कुछ ढका हुआ नहीं रहता है, तो सूर्य की जरूरत नहीं पड़ती है, भगवान का ही तेज सब कुछ हो रहा होता है। वैदिक साहित्य में स्पष्ट कहा गया है कि भगवान के प्रकाशमय तेज से प्रत्येक वस्तु प्रकाशित होती है। अब हर चीज जब भगवान के प्रकाश में तेज से प्रत्येक वस्तु प्रकाशित है तो आगे कहते हैं अतः यह स्पष्ट है कि वे इस भौतिक जगत में स्थित नहीं है। यानी कि वो अगर इस संसार में होते तो फिर उन्हीं की वजह से सब कुछ चमक रहे होते, वो तो आध्यात्मिक जगत यानी वैकुंठ लोक में ही स्थित है, जो चिन्मय आकाश में बहुत ही दूर पर है, बहुत ज्यादा दूर है। जो वैकुंठ लोक किधर है पता है, हमारे ये जो मैंने आपको अक्सर बताती हूँ ना 14 लोक हैं, पृथ्वी, उसके बाद जन लोक, तप लोक, महर लोक, सिद्ध लोक, ब्रह्म लोक, स्वर्ग लोक, इसके ऊपर बहुत ऊपर जाके वैकुंठ, ये भगवान श्री कृष्ण का गौलोक वृंदावन धाम है। तो ये बहुत दूर है, ये बहुत दूरी पर है। इसकी भी पुष्टि वैदिक साहित्य में होती है। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं ये सारी चीजें जो है हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, श्वेताशत्र उपनिषद 3.8 में क्या लिखा है, आदित्य वर्णम तमसः परस्तात। आदित्य, आदित्य कहते हैं सूर्य को, वर्णम मतलब सूर्य की तरह प्रकाशमान, सूर्य की जैसा। हमारे पास देखो वैसे तो भगवान बहुत ज्यादा चमकदार होंगे, लेकिन कोई आपको ना बताए कैसे, क्योंकि हमने उससे ज्यादा, सूर्य से ज्यादा चमक वाली कोई चीज देखी नहीं है। तो ऐसे इसीलिए शास्त्रों में लिखा आदित्य वर्णम, वो सूर्य की तरह है, तेजोमय है। तमसः परस्तात, तमस कहते इस भौतिक जगत को, बोलो इस क्या मतलब लिखा हुआ है, वे सूर्य की भांति अत्यंत तेजोमय है लेकिन इस भौतिक जगत के अंधकार से बहुत दूर है, इससे बहुत परस्तात मतलब बहुत दूर है। उनका ज्ञान दिव्य है। वैदिक साहित्य पुष्टि करता है कि ब्रह्म घनीभूत दिव्य ज्ञान है, यानी कि जो ज्ञान वहां का है वो बहुत ब्रह्म घनीभूत है, वो मतलब हमारी भौतिक समझ से बहुत परे है। हमें तो यही समझ में नहीं आता कि भगवान वहां पर, ये मनुष्य की स्टार्ट कैसे हुई और वहां पर कैसे हर चीज नित्य है, इटरनल कैसे है, ये समझ में नहीं आ रहा। तो वहां का ज्ञान जो है वो ब्रह्म घनीभूत दिव्य ज्ञान है। जो वैकुंठ लोक जाने का इच्छुक है उसे परमेश्वर द्वारा ज्ञान प्रदान कर दिया जाता है। अब यहाँ पर श्री प्रभुपाद इतनी अच्छी बात बता रहे कि उसके लिए आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप जाना चाहते हो तो भगवान दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, तो जो आपको भगवान के पास जाने के लिए जो चीज चाहिए ना, वो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, ना ही आपको किसी शास्त्र में मिलेगा। वो दिव्य ज्ञान आपके हृदय में प्रकाशित होगा। और हृदय में कब प्रकाशित होगा, जब आपके अंदर श्रद्धा विकसित होगी। जितनी जितनी श्रद्धा आप विकसित करोगे उतना उतना दिव्य ज्ञान आपके हृदय में प्रकाशित होता जाएगा। ये क्वेश्चन आया था ना कल कि भाई श्रद्धा कितनी विकसित की जाए, ये कोई टॉपिक, आप श्रद्धा कितनी विकसित की जाए नहीं, आपको कितनी कृपा की जरूरत है उतनी विकसित करनी है। जिस भगवान श्री कृष्ण 7.22 में बोलते हैं, यो याम याम तनुम भक्त श्रद्धयार्चितुम इच्छति तस्य तस्याचरं श्रद्धा तामेव विदधाम्यहम्। आप जितनी जितनी श्रद्धा को विकसित करते जाओगे उतना उतना ज्ञान, दिव्य ज्ञान आपके हृदय में प्रकाशित होता जाएगा। आप किस हद तक सिंसियर हो, किस हद तक सीरियस आपको होना है, ये इसका डिसीजन भगवान नहीं लेंगे, ना ही इसका डिसीजन गुरु महाराज लेंगे। आपको कृष्ण प्राप्ति के लिए किस हद तक जाना है, इसका डिसीजन केवल और केवल आप लोगे, क्योंकि एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन योर डिजायर। ये बोलने की बात नहीं है कि भाई आप इतनी श्रद्धा एटलीस्ट, लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने हमारे लिए सरलता बनाने के लिए ये तो बता दिया। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22.62, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत होया। यानी श्रद्धा का अर्थ है कि किसी अलौकिक वस्तु में टूट कर विश्वास, इस बात पर इतना विश्वास होना चाहिए कि यदि मैं कृष्ण की भक्ति करूं, कृष्ण का नाम स्मरण करूं, कृष्ण के विषय में सोचूं, कृष्ण की सेवा करूं, तो मेरे सारे कार्य स्वतः ही हो जाएंगे और कुछ मुझे करने की आवश्यकता नहीं है। अब कृष्ण के अंदर कितना अटूट विश्वास होना है ये तो हमें खुद डिसाइड करना है ना कि कितना श्रद्धा को कितना विकसित करूं। जितना जितना श्रद्धा विकसित हो जाएगी, यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं उसे परमेश्वर द्वारा ज्ञान प्रदान कर दिया जाता है जो प्रत्येक हृदय में स्थित है। अब भगवान हृदय में स्थित है, ये मंत्र जो है ना महामंत्र, ये ना बोलने का मुंह से बोलने की चीज नहीं है। इसके लिए कहा गया नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस। चैतन्य का क्या मतलब है पता, कि उसको खबर है कि तुम कितना सीरियस हो। उसे बताने की जरूरत नहीं है कि मैं अभी 10% सीरियस हूँ, 20% सीरियस हूँ या फिर 70% सीरियस हूँ। वो चैतन्य है, वो जितना जितना आपका विश्वास होगा उतना उतना खुलकर आपके सामने आएगा और उतना ही आपको रस आएगा, उतना ही आप कृष्ण के प्रेम में। भगवान और नाम में कोई अंतर नहीं। अभी देखो हमें को नाम लगता है ना, जब हम जप कर रहे होते हैं हमें अक्षर लगते हैं ना, HARE हरे, ये भौतिक लफ्ज नहीं है, हरे जो है वो आध्यात्मिक लफ्ज है। और हमें कैसे वो रियलाइज होगा, जितनी जितनी हमारे अंदर श्रद्धा होगी, जितनी जितनी सिंसियरिटी होगी, वो बताएगा हमें वो नाम। अभी जब हृदय में खुद ब खुद दिव्य ज्ञान प्रकाशित होता जाएगा और नाम हमारे सामने सुफूर्त होता जाएगा, चमकता जाएगा, तभी हमारा ज्ञान उदय होता जाएगा और हमें सब कुछ पता चलता जाएगा। एक वैदिक मंत्र श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं श्वेताक्षर उपनिषद 6.18, और उस मंत्र में बताया है तम हदेवम आत्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुवाय शरणम शरणम अहम प्रपद्ये। शरण मतलब मुमुक्षवाय, मुमुक्ष मतलब जो मुक्ति की इच्छा रखते हैं। क्या बताया, तमह देवम आत्मबुद्धि प्रकाशम, कि जो चाहते हैं कि मुझे मुक्ति हो, मुक्ति मिले, मुमुक्षवाय शरणम प्रपद्ये, कि वो उसको क्या करना है, मुक्ति के इच्छुक मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान की शरण में जाए। कितना इजी लाइन है ये, लेकिन इसको समझना कैसा है पता है, शरण में जाने का मतलब ही हमें समझना है कि शरण में जाने का क्या मतलब होता है। शरण में जाने का मतलब होता है टोटली सरेंडर। कितना सरेंडर करना है ये कोई नहीं बताएगा आपको, ये है कि आपको टोटली सरेंडर करना है। टोटली का क्या मतलब है कि आपकी कोई इच्छा नहीं रह जाए, है ना। सरेंडर का मतलब यही होगा कि जो भक्त की केवल एक इच्छा होती है कि कृष्ण की इच्छा पूरी होनी चाहिए, बस उससे मुझे कौन सी तकलीफ मिल रही है, मुझे कितना दुख मिल रहा है, मुझे कितना कष्ट सहना पड़ता है, कितनी बार मुझे जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसना पड़ रहा है, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। ये है कि कृष्ण तुम्हारी इच्छा पूरी, दुख में सुख में मेरे प्रीतम तेरी इच्छा पूरी हो, ये है शरण का मतलब। तो अब कितना शरण में गए हुए हैं हम, ये तो हम खुद ही रियलाइज करेंगे ना। आगे बताया जहां तक चरम ज्ञान के लक्ष्य का संबंध है, जो ज्ञान है उसके बारे में बता रहे हैं, वैदिक साहित्य से भी पुष्टि होती है। वैदिक में वेद में क्या बताया गया, श्वेताक्षर उपनिषद 3.8 में बताया गया, लिखा हुआ है तमेव विदित्वाति। तमेव मतलब उसको, जिसको जिस भगवान की बात कर रहे हैं ना, जो परमात्मा की बात कर रहे हैं उसको, तमेव विदित्वादि। विदित मतलब जान लोगे ना, जब आप उसको जान लोगे तो मृत्यु में थी, फिर क्या होगा, फिर आप जन्म मृत्यु के चक्कर से फंसे हो, यानी उन्हें जान लेने के बाद ही जन्म तथा मृत्यु की पराधि को लांगा जा सकता है। श्वेताक्षर उपनिषद 3.8। आगे बताया वे प्रत्येक हृदय में परमात्मा परम नियंता के रूप में स्थित हैं। अब ये वो रहने की जगह बता रहे हैं कि वो रहते तो तुम्हारे हृदय में है, भले वो कितने ही चमकदार क्यों ना हो, कितना ही उनके अंदर ज्ञान क्यों ना हो, रहते किधर हैं, भगवान ने भी बताया हृदय सर्वस्य विष्ठितम, यानी कि वो आपके हृदय के अंदर रहते हैं। परमेश्वर के हाथ पैर सर्वत्र फैले हैं, लेकिन जीव आत्मा के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता। अतएव यह मानना ही पड़ेगा कि कार्य क्षेत्र को जानने वाले दो ज्ञाता हैं। श्री प्रभुपाद जी अब यहाँ पर अपना निर्णय दे रहे हैं कि जो कार्य क्षेत्र है यानी कर्म क्षेत्र है उसको जानने वाले दो हैं, एक कौन है? जीवात्मा और दूसरा परमात्मा। पहले के हाथ पैर केवल किसी एक स्थान तक सीमित है, यानी एकदेशी है, जैसे हम एक जगह पर होते दूसरी जगह पर नहीं होते ना। और जबकि कृष्ण के हाथ पैर सर्वत्र फैले हुए हैं, इसकी पुष्टि श्वेताक्षर उपनिषद में 3.7 में इस प्रकार हुई है। सर्वस्य प्रभु ईशानम, ईशन ईशन के तो प्रभु और ईश, इसको बोलते हैं इष्ट है, सबके स्वामी है। सर्वस्य हर किसी के प्रभु ईशानम, उसके सब जितने भी लोग हैं, जितने भी जीव हैं, जितने भी जानदार हैं, उनके ईश हैं, उनके प्रभु हैं। और सर्वस्य शरणम रहत, और सबकी सबको शरण प्रदान करने वाले हैं, सबको अपने शरण में रखने वाले हैं, यानी वह परमेश्वर या परमात्मा समस्त जीवों के स्वामी या प्रभु हैं। अतएव वह उन सब का चरम आश्रय है, यानी सबको शरण देते हैं। अतएव इस बात से मना नहीं किया जा सकता कि परमात्मा तथा जीव आत्मा सदैव भिन्न होते हैं। अब श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर एक लास्ट लाइन में हमें ये क्लियर कर देना चाहते हैं कि जीव आत्मा और परमात्मा कभी एक नहीं हो सकते हैं, वो दो होते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा है क्या, ज्ञानम ज्ञेयम, ज्ञान और ज्ञेय सब कुछ हमने समझा। अब थोड़ा सा हम लोग इसको रिवाइज करेंगे कि हमने अब तक क्या क्या समझा है। जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, और इस सबको ज्ञान और ज्ञेय को मैं जानना चाहता हूँ, तो भगवान श्री कृष्ण ने एक एक लाइन में बताया, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते, यानी कि ये जो क्षेत्र है, ये जो शरीर है, इदम शरीरम, वो क्या है, क्षेत्र है। एतद् यो वेत्ति तं प्राहु, और जो इस क्षेत्र को वेत्ति मतलब जानता है, क्षेत्र इति तद्विधि, उसको क्या कहना, क्षेत्रज्ञ। ये शरीर क्षेत्र है और उसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। और आगे भगवान श्री कृष्ण ने क्लियर कर दिया, देखो पहले तीसरे श्लोक में बता दिया, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, देखो तुम्हें सही वाला क्षेत्रज्ञ यानी कि परम क्षेत्रज्ञ मुझे जानना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं सर्व क्षेत्र क्षेत्रेषु भारत, मैं सब क्षेत्रों को जानता हूँ। और आगे बताया, क्षेत्रज्ञ क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम, और जो क्षेत्र को जानता है और क्षेत्रज्ञ को जानता है उसको ज्ञान कहते हैं। तज ज्ञानम मतम, मेरा तो यही मेरा फैसला यही है, मैं यही डिसीजन दे रहा हूँ, जो क्षेत्र को जानता है यानी कर्म क्षेत्र को ये शरीर, और जो क्षेत्रज्ञ को यानी कि जो क्षेत्र को जानने वाले दो है ना, कौन कौन से, आत्मा और परमात्मा, इनको जो जान लेता है वो ज्ञानी है, बाकी सारे बेवकूफ है भगवान के हिसाब से। ये है आगे भगवान ने बताया कि अब तुम मुझे संक्षेप में सुनो कि क्षेत्रज्ञ क्या है, क्षेत्र कर्म क्षेत्र क्या है। पहले कर्म क्षेत्र के बारे में बताया चौथे श्लोक में बोला, अभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, लेकिन पांचवें में बताया, देखो मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ऋषियों मुनियों ने और जो शास्त्रों में ये बताया ना कि ऋषि भीर बहुधा कीतम छिंदो भीर विविधाय पृथक, कि जो ब्रह्म सूत्र में जितने में वो बताया गया ना कर्म क्षेत्र के विषय में, वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। क्या बताया कर्म क्षेत्र के विषय में, श्लोक नंबर 6 में साफ साफ बताया, महाभूतानहंकारो बुद्धिर अव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंच चैन्द्रिय गोचर, यानी महाभूतम पांच महाभूत, अहंकार 6, बुद्धि 7, 8 अव्यक्त यानी कि जो गुण है वो 3 गुण जो है वो 8, कितने हुए 5 और 8 हो गए, ठीक है। उसके बाद इंद्रियाणि दशैकं, 10 इंद्रियां, कौन कौन सी, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियां आंख कान नाक त्वचा रसना, और कर्म इंद्रियां हाथ पैर जिह्वा और उत्सर्जन तथा विसर्जन की 2 इंद्रियां। दशैकम, एकम मतलब मन, अब वो 8 हो गए और 11 ये हो गए, टोटल कितने हुए 19। और 5 आगे बोला, पंच चैन्द्रिय गोचर, और 5 इंद्रियों के विषय कौन से, रूप रस स्वाद गंध स्पर्श, ठीक है। और आगे बताया इच्छा द्वेष, यानी कि इसके अतिरिक्त इच्छा द्वेष संगा चेतना धृति ये सब संसार में हमें आते हैं, मतलब फील करने पड़ते हैं। और आगे बताया कि देखो ज्ञान के विषय में मैं आपको बता रहा हूँ, श्लोक नंबर 8 से लेकर 12 तक भगवान श्री कृष्ण ने हमें ज्ञान के विषय में बताया। भगवान ने कहा, विनम्रता दम्भहीनता अहिंसा सहिष्णुता सरलता प्रमाणिक गुरु के पास जाना पवित्रता स्थिरता आत्मसंयम इंद्रिय तृप्ति के विषयों के परित्याग अहंकार का प्रभाव और अहंकार का अभाव जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर, बार, अन्य वस्तुओं से ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति अभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, मेरे प्रति, भगवान श्री कृष्ण ने बोला देखो इम्पोर्टेंट ज्ञान ये कि जब आप मुझसे प्रेम करोगे ना और अनन्य भक्ति करोगे तो बाकी सारी चीजें खुद ब खुद आपके अंदर आ जाएंगी। और आगे बताया, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलग रहना, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकार करना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको भगवान श्री कृष्ण ने कहा मेरे हिसाब से ये सब ज्ञान है और इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है वो सब बेवकूफी है। ये हमने ज्ञान के विषय में पढ़ा और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने हमें बताना शुरू किया है श्लोक नंबर 13 से कि अब मैं तुम्हें गेय के विषय में बताता हूँ। अर्जुन कहता ना गेयम ज्ञानम, तो गेय के विषय में बोला जिस प्रकार, अब देखो गेय दो होते हैं, एक आत्मा यानी कि पहले उसने 13 श्लोक को देखिए अगर आप देख रहे हो तो अनादि मत परमम, वो पहला जो ज्ञान है, ज्ञान ये चीज है वो तो अनादि तो वो भी है, वो भी ब्रह्म है, अनादि है लेकिन वो मेरे अधीन है और इसीलिए इस भौतिक जगत के कार्य कारण से परे है, यानी कि मेरे अधीन है जो आत्मा है वो, शरीर की बात नहीं हो रही आत्मा की, क्योंकि वो शरीर भौतिक कार्यकलापों से परे नहीं होता है, वो करता रहता है, लेकिन आत्मा के विषय में भगवान श्री कृष्ण ने सिर्फ एक ही 13 श्लोक बताया। उसके बाद से रियल गिया यानी कि वास्तविक जो ज्ञान की जो चीज है, ज्ञान का जो लक्ष्य है उसके बारे में बताया भगवान श्री कृष्ण ने कहा जो दूसरी चीज है वो अलग है, वो किसी के अधीन नहीं है, हर जगह उसके हाथ पैर मुंह कान सर्वत्र परमात्मा सभी वस्तुओं के व्याप्त हैं। और आगे बहुत 15 में उसको और ज्यादा डिक्लेयर किया कि सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम, इंद्रियों को वो मूल स्रोत होते हैं लेकिन फिर भी इंद्रियां नहीं होती है। लेकिन श्री प्रभुपाद ने बहुत अच्छे तरीके से बताया वो भौतिक इंद्रियां नहीं होती हैं लेकिन आध्यात्मिक इंद्रियां होती हैं जिनके जरिए वो हमें देखते हैं, हमें महसूस करते हैं, हमसे बात करते हैं, हमारी दी हुई प्रसाद को स्वीकार करते हैं। और असत्तम सर्ववृत शैव निर्गुणम गुणम, यानी कि वो इन सब गुणों से, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये भौतिक गुणों से वो परे हैं। और आगे बताया श्लोक नंबर 16 में बहिरंतश्च भूतानां, सारे जीव प्राणियों के अंदर भी हैं, बाहर भी हैं। और आगे बताएं सूक्ष्मत्वात् तद् विज्ञेयम्, यानी कि वो इतने सूक्ष्म हैं कि वो हमारे इन भौतिक इंद्रियों द्वारा जाने नहीं जा सकते लेकिन वो हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनका कोई रूप नहीं है, वो निराकार है। दूरस्थ चांतिकम, और सबसे दूर होने के बावजूद भी हमारे निकट है, कहाँ निकट है, हमारे हृदय में। और आगे बताया कल हमने पढ़ा था 17 श्लोक, अविभक्तम च भूतेषु विभक्त विभक्तमिव च स्थितम, यानी कि वो हर चीज में अविभक्त हैं, माने कि ऐसा लगता है कि वो सारे जीवों में विभाजित हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, सबके अंदर परमात्मा है लेकिन वो कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए जाते क्योंकि वो पूर्ण हैं और वो पूर्ण ही रहते हैं, पूर्णमदः पूर्णमिदम्। इस चीज इसको हम लोगों ने कल बहुत अच्छे तरीके से बताया। और अंतिम श्लोक जो आज हमने पढ़ा है इस ज्ञान के टॉपिक पे, उसमें आज हमने क्या पढ़ा कि वो समस्त चमकदार चीजों के या तेजोमय चीजों के स्रोत हैं, वो ज्ञान है, ज्ञेय है और ज्ञान का लक्ष्य है और सब जीवों के हृदय में प्रकाशमान है। यहाँ तक जिस चीज को समझ में आ गया है वो मुझे आज बताएंगे कि भाई यहाँ तक समझ में आ गया है, फिर हम लोग कल श्लोक नंबर 19 पढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।